डॉक्टर डेव मैथ्यूसन, रहस्योद्घाटन, व्याख्यान 28, प्रकाशित वाक्य 21, नई सृष्टि और दुल्हन, नया यरूशलेम, 2024, डेव मैथ्यूसन और टेड हिल्डेब्रांट। यह रहस्योद्घाटन की पुस्तक पर अपने पाठ्यक्रम में डॉक्टर डेव मैथ्यूसन हैं। यह सत्र 28, प्रकाशित वाक्य 21, द न्यू क्रिएशन एंड द ब्राइड न्यू जेरूसलम है। प्रकाशित वाक्य के अध्याय 21 और श्लोक 1 के साथ हम एक अर्थ में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का एक नया चरण, अंतिम चरम दृष्टि शुरू करते हैं। हालांकि हमने कहा कि 21:01 से 8 तक परिवर्तन के अंत में एक तरह की सेटिंग है, दुल्हन नए यरूशलेम के परिचय के लिए एक तरह की सेटिंग है। श्लोक 9 अध्याय 21 श्लोक 1 से 8 में हमें सबसे महत्वपूर्ण विषयों और विचारों से परिचित कराते हैं जो शेष 21:9-22:5 में विकसित होंगे, इसलिए प्रस्तुत विषय सेटिंग प्रदान करते हैं। श्लोक 1 फिर एक नई रचना की दृष्टि से शुरू होता है। अब जबकि निर्णय के व्यापक दृश्य में सब कुछ हटा दिया गया है, नई रचना आती है। इसलिए जॉन शुरू करता है, मैं अध्याय 21 के पहले 8 छंद पढ़ूंगा। फिर मैंने एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी देखी, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी मिट गई थी और समुद्र भी न रहा। मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को परमेश्वर के पास से स्वर्ग से उतरते हुए देखा, एक दुल्हन के रूप में तैयार अपने पति के लिए खूबसूरती से सजी हुई। और मैंने सिंहासन में से एक ऊंचे शब्द को यह कहते हुए सुना कि परमेश्वर का निवास मनुष्यों के बीच में है और वह उनके साथ रहेगा। वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर स्वयं उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से हर आंसू पोंछ डालेगा। अब न मृत्यु होगी, न शोक, न रोना, न पीड़ा होगी, क्योंकि पुरानी व्यवस्था समाप्त हो गई है। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, मैं सब कुछ नया बना रहा हूं। फिर उसने कहा, इसे लिख ले, क्योंकि ये बातें विश्वासयोग्य और सच्ची हैं। उसने मुझसे कहा, यह खत्म हो गया। मैं अल्फा और ओमेगा, शुरुआत और अंत हूं। जो प्यासा हो मैं उसे जीवन के जल के सोते से सेंटमेंट पिलाऊंगा। जो जय पाए उसे यह सब विरासत में मिलेगा, और मैं उसका परमेश्वर ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। परंतु कायर, अविश्वासी, नीच, हत्यारे, व्यभिचारी, जादू करने वाले, मूर्ति पूजक और सब झूठ बोलने वालों का स्थान जलती हुई गंधक की ज्वलंत झील में होगा। यह दूसरी मौत है। अब श्लोक 1 पुराने नियम के संकेत के साथ शुरू होता है। इस वाक्यांश के पीछे प्राथमिक पाठ, मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी, यशाया अध्याय 65 और पद 17 है, जहां भगवान की प्रत्याशा के संदर्भ में अपने लोगों को निर्वासन से बहाल किया गया है, लेकिन एक नए रचनात्मक कार्य में जो उनसे भी आगे निकल जाता है, निर्वासन से शारीरिक वापसी, लेकिन एक नए रचनात्मक कार्य की आशा। अध्याय 65 में मैं श्लोक 16 से शुरू करूंगा, जो कोई भी देश में आशीर्वाद का आह्वान करेगा वह सत्य के ईश्वर द्वारा ऐसा करेगा। जो कोई देश में शपथ खाएगा वह सत्य परमेश्वर की शपथ खाएगा, क्योंकि पिछली विपत्तियां भुला दी जाएंगी और तुम्हारी आंखों से ओझल हो जाएंगी। पद 17, देख मैं नया आकाश और नई पृथ्वी रचूंगा, पिछली बातें न याद रहेंगी न याद आएंगी। परंतु फिर वह आगे कहता है, जो कुछ मैं उत्पन्न करना चाहता हूँ उससे आनंदित और मगन हो, क्योंकि मैं यरूशलेम को आनंदमय और उसकी प्रजा को आनंदमय बनाऊंगा। मैं यरूशलेम के कारण आनंद मनाऊंगा। तो यह पाठ श्लोक 1 में नई सृष्टि के परिचय के लिए पृष्ठभूमि प्रदान करता है, लेकिन श्लोक 2 में पवित्र शहर न्यू जेरूसलम के लिए भी पृष्ठभूमि प्रदान करता है। इसलिए श्लोक 1 स्पष्ट रूप से बताता है कि यहाँ यशाया 65:17 की भविष्यवाणी की अंतिम पूर्ति है। अब जॉन नए आकाश और नई पृथ्वी को आते हुए देखता है। हालांकि यह संभवतः उत्पत्ति एक और पद एक तक भी जाता है, जहां शुरुआत में भगवान ने आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया। लेकिन हम अध्याय तीन से जानते हैं कि यह नष्ट हो गया था और नुकसान पहुंचाया गया था, विफल कर दिया गया था और परेशान कर दिया गया था, और अब सृष्टि पाप में डूब गई है। इसलिए यशायाह अध्याय 65 संभवतः मूल रचनात्मक कार्य की बहाली की आशा करता है। और इसलिए अब जॉन नई सृष्टि को उभरता हुआ देखता है, ताकि परमेश्वर उत्पत्ति तीन के बाद अपनी परियोजना को न छोड़े जब पाप ने दुनिया में प्रवेश किया और मृत्यु और विनाश और पाप और बुराई लाया। भगवान अपने प्रोजेक्ट को नहीं छोड़ते हैं, बल्कि इसके बजाय अब भगवान इसे पुनर्स्थापित करेंगे और भगवान इसे एक नए रचनात्मक कार्य में बदल देंगे, यशायाह अध्याय 65, जिसे जॉन अब देखता है। इस बात पर भी ध्यान दें कि पहले स्वर्ग और पृथ्वी का निधन हो चुका है। संभवतः यह 20 में अंतिम फैसले का संदर्भ है, जहां स्वर्ग, आकाश और पृथ्वी सिंहासन पर बैठे व्यक्ति की उपस्थिति से भाग जाते हैं। और एक बार फिर हमें शायद इसे पूरी तरह से भौगोलिक और भौतिक के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि पृथ्वी को शैतान और जानवरों के प्रभुत्व के रूप में देखना चाहिए। पृथ्वी को एक ऐसी जगह के रूप में देखना चाहिए जिसे उन्होंने नुकसान पहुंचाया और तबाह किया है, एक ऐसी जगह के रूप में जहां भगवान के लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है, जिसे अब हटा दिया गया है और अब एक नई रचना सामने आई है। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि यदि आप यशायाह अध्याय 65 पर वापस जाते हैं, तो हम पाते हैं कि वहां नई रचना सिर्फ भौगोलिक या भौतिक नहीं है, हालांकि यह सच है। लेकिन यशायाह अध्याय 65 का शेष भाग एक ऐसे स्थान के बारे में बात करेगा जो फलदायी है, एक ऐसे स्थान के बारे में बात करेगा जहां पूर्ण न्याय है, जहां कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, कोई भी अब परमेश्वर के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई उन्हें बंधुवाई में नहीं ले जाएगा, कोई नहीं उनकी फसलों आदि को नष्ट कर देगा। इसलिए यहां जो नई सृष्टि जॉन देखता है वह न केवल भौतिक और भौगोलिक है, बल्कि उसे पहली रचना पर शैतान के शासन और प्रभुत्व के विपरीत देखा जा सकता है। अब यहां एक नई रचना है जहां न्याय कायम होगा, जहां धार्मिकता कायम होगी, जहां शांति कायम होगी, जहां अब सभी हिंसा, रक्तपात और उत्पीड़न हटा दिए जाएंगे। अब एक प्रश्न यह उठता है कि क्या हमें इसे बिल्कुल नई रचना एक स्निहिलो के रूप में समझना चाहिए जो शून्य से बनी रचना है, या यह एक परिवर्तन और नवीनीकरण है। मैं नए नियम के बाकी हिस्सों के आधार पर और यहां तक कि शायद रहस्योद्घाटन के आधार पर तर्क दूंगा कि हमें यह देखना चाहिए कि नई रचना और पिछली रचना के बीच निरंतरता और असंतोष दोनों हैं। अर्थात यहां प्रयुक्त नए शब्द पर ध्यान दें, जो इस रचना की गुणात्मक नवीनता और मूल रचना के बरक्स इस रचनात्मक कृत्य पर जोर देता है। लेकिन हमें संभवतः इसमें निरंतरता और असंतता दोनों देखनी चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल नया है, यह मूल रचना से स्पष्ट रूप से भिन्न है। लेकिन साथ ही मुझे आश्चर्य है कि क्या हमें इसे वर्तमान सृष्टि के परिवर्तन और नवीकरण के रूप में नहीं देखना चाहिए, विनाश और फिर से शुरू करने के विपरीत, कि यह सृष्टि पूरी तरह से पुनर्निर्मित, पूरी तरह से नवीनीकृत, पूरी तरह से रूपांतरित है। और यह फिर से इस बात पर जोर देने का प्रतीक है कि जॉन शैतान के प्रभुत्व और विनाशकारी प्रभाव के तहत वर्तमान पृथ्वी और एक नई पृथ्वी जो गुणात्मक रूप से भिन्न है के बीच निरंतरता पर अधिक जोर देना चाहता है। उस पर जोर देने के लिए जॉन विनाश की भाषा का उपयोग करता है। पहले पृथ्वी सिंहासन से भाग गई और कोई ठिकाना न मिला। पहला स्वर्ग और पृथ्वी अब अध्याय 21:01 में खत्म हो चुका है। लेकिन इसका मतलब संभवतः एक पूरी तरह से नए रचनात्मक कार्य में इस वर्तमान सृष्टि के नवीनीकरण और परिवर्तन और पूर्ण पुनरोद्धार का प्रतीक है, जहां इसे पाप और बुराई और मृत्यु के सभी विनाशकारी प्रभावों और शैतान और जानवर द्वारा किए गए नुकसान से मुक्त कर दिया जाता है, जिसके शासन में पृथ्वी परिश्रम करती थी। अब यह उससे मुक्त हो गया है, रूपांतरित हो गया है और एक नए रचनात्मक कार्य में नवीनीकृत हो गया है और जॉन अब इसे देखता है। मैं यह भी सोचता हूं कि यह क्या सुझाव देता है। श्लोक 21:1 मुझे लगता है कि यह हमारे युगांत शास्त्र और अंत समय और हमारी मंजिल के बारे में हमारी समझ के बारे में क्या सुझाव देता है, यह महत्वपूर्ण है। 21:1 हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर के लोगों का अंतिम लक्ष्य, परमेश्वर के लोगों का अंतिम गंतव्य स्वर्ग नहीं है। हम अक्सर स्वर्ग जाने के बारे में बात करते हैं और मैं स्वर्ग जाने का इंतजार नहीं कर सकता, नहीं तो एक दिन हम स्वर्ग में होंगे और उसके बारे में इस तरह से बात करना निश्चित रूप से सच है। वास्तव में अन्यत्र नया नियम परमेश्वर के लोगों को चित्रित करता प्रतीत होता है। प्रकाशित वाक्य 15:14 में भी हमें स्वर्ग में परमेश्वर के लोगों का एक दर्शन होता प्रतीत होता है, लेकिन 21:1 इसे खोलता है और यह स्पष्ट करता है कि परमेश्वर के लोगों का अंतिम गंतव्य स्वर्ग नहीं है, बल्कि यह पृथ्वी पर है। मुझे अक्सर याद है कि एक बार मुझे हाई स्कूल के छात्रों के एक समूह से बात करने के लिए कहा गया था और संडे स्कूल की शिक्षिका ने मुझे बताया था कि वह बहुत व्याकुल थी क्योंकि उनमें से कोई भी स्वर्ग नहीं जाना चाहता था और वह चाहती थी कि मैं स्वर्ग के बारे में बात करूं। इसलिए मैंने उनसे बात करना शुरू किया और मुझे पता चला कि समस्या यह थी कि जब वे स्वर्ग के बारे में सोचते थे तो वे कहावत के बारे में सोचते थे, और आपने यह छवि पहले भी सुनी होगी, यह कहावत बादलों में वीणा लेकर और सफेद कपड़े पहने हुए थी वस्त्र, और वे वहां नहीं जाना चाहते थे। और जैसा कि मैंने सुना, सच कहूं तो मैं वहां जाना भी नहीं चाहता था। मैं परमेश्वर के लोगों के लिए बादल पर तैरने से अधिक उबाऊ अस्तित्व के बारे में नहीं सोच सकता। कोई क्षणभंगुर अशरीरी अस्तित्व वीणा बजाता है और सफेद वस्त्र में घूमता है, वह कैसा अस्तित्व है? यह कैसी नीति है? और इस तरह से बोलना बेतुका लग सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकाशित वाक्य 21 में समाप्त होने वाले पवित्र शास्त्र का पूरा विवरण भगवान के लोगों को किसी तरह स्वर्गीय अशरीरी आध्यात्मिक प्रकार के अस्तित्व को प्राप्त करने के रूप में प्रस्तुत नहीं करता है। वह पहली, दूसरी और तीसरी शताब्दी का ज्ञानवाद था। इसके बजाय शुरुआत से, उत्पत्ति 1:2 से भगवान ने हमें भौतिक पृथ्वी पर रहने वाले भौतिक प्राणी के रूप में बनाया है। ईश्वर अब हमें किसी प्रकार के क्षणभंगुर आध्यात्मिक अस्तित्व से नहीं बचाता है, बल्कि इसके बजाय ईश्वर का इरादा हमें उसी तरह से पुनर्स्थापित करना है जिस तरह से उसने हमें मूल रूप से बनाया है। और इसलिए प्रकाशित वाक्य 21 इतिहास के अंतिम चरमोत्कर्ष और लक्ष्य की दृष्टि को समाप्त करता है और अपने लोगों के लिए भगवान का मुक्ति का इरादा हमारे साथ वीणा और बादलों के साथ आकाश में नहीं तैरने के साथ समाप्त होता है, बल्कि इसके बजाय यह हमें एक नई भौतिक पृथ्वी पर ले जाता है। और अध्याय 20 में भौतिक पुनरुत्थान में पुनर्जीवित होने के बाद अब भगवान के लोग एक भौतिक रचना, एक नई पृथ्वी पर उभरते हैं। मैंने एक बार एक व्यक्ति को यह कहते हुए सुना था, उस विशिष्ट इंजीलवादी टैगलाइन के जवाब में जिसे किसी ने एक बार कहा था, न जाने वे किससे बात कर रहे थे, उनसे पूछें, यदि आप आज रात मर जाते हैं तो क्या आप जानते हैं कि आप स्वर्ग जाएंगे? उनकी प्रतिक्रिया है, हाँ मैं करता हूँ, लेकिन मुझे वहां बहुत लंबे समय तक रहने की उम्मीद नहीं है। और उनकी प्रतिक्रिया प्रकाशित वाक्य 21 के अनुरूप थी। प्राथमिक नीति स्वर्ग जाना नहीं है, कम से कम यदि स्वर्ग से हमारा तात्पर्य कुछ हवादार, क्षणभंगुर, अशरीरी अस्तित्व से है। इसके बजाय स्पष्ट रूप से हमारी नियति उत्पत्ति 1 और 2 में सृष्टि के ईश्वर के मूल इरादे के अनुरूप है और वह हमें एक नई रचना के लक्ष्य तक लाना है। एक दिलचस्प बात यह है कि जॉन कहते हैं कि समुद्र अब नहीं रहा। मुझे यह दिलचस्प लगता है कि वह क्यों इस बात पर जोर देंगे कि समुद्र अब नहीं था, खासकर इसलिए क्योंकि यह यशाया अध्याय 65 में नहीं पाया जाता है। और आकाश और पृथ्वी का उल्लेख काफी व्यापक प्रतीत होता है। उसने यह क्यों कहा कि समुद्र अब नहीं रहा? दो चीजें। सबसे पहले मुझे लगता है कि समुद्र पृथ्वी स्वर्ग और समुद्र के त्रिभागीय संदर्भ का एक हिस्सा होने के बजाय यहाँ समुद्र का उल्लेख किया गया है, क्योंकि सबसे पहले पूरे रहस्योद्घाटन में समुद्र ने एक भूमिका निभाई है। अध्याय 20 में यह मृतकों का स्थान था। यह वह स्थान भी है जहां से पहला राक्षसी जानवर समुद्री राक्षस अध्याय 13 में पशु आकृति उगता है, और समुद्र भी पूरे रहस्योद्घाटन में रसातल के साथ स्पष्ट रूप से जुड़ा हुआ है। अध्याय 11 में जानवर रसातल से बाहर आता है, लेकिन फिर वह समुद्र से बाहर आता है ताकि समुद्र में बुराई अराजकता हानि और मृत्यु का अर्थ हो। यह समुद्री राक्षस का स्थान है। पुराने नियम में आप एक सांप या एक अजगर या समुद्र से जुड़े इस राक्षस को बुराई और अराजकता के स्थान के रूप में पाते हैं। तो समुद्र को हटाने का कारण यह है कि यह सभी बुराइयों दर्द अराजकता और अव्यवस्था का प्रतीक है और पहली सृष्टि की बुराई है जिस पर ड्रैगन और जानवरों द्वारा शासन किया गया था जो बाहर आए हैं रसातल जो समुद्र से निकला। तो समुद्र का अराजकता बुराई और मृत्यु के साथ स्पष्ट संबंध है और यह समुद्री राक्षस का घर है जो भगवान के उद्देश्यों और उनके लोगों के लिए शत्रुतापूर्ण और शत्रुतापूर्ण है। समुद्र इसी का प्रतिनिधित्व करता है। शायद समुद्र इस तथ्य पर गौर करें कि समुद्र अब नहीं रहा। बाद में पद 4 में यूहन्ना कहता है कि मृत्यु और शोक और रोना और पीड़ा न रहेगी क्योंकि पुरानी व्यवस्था बीत गई है। इसलिए समुद्र को संभवतः पहली रचना में दर्द शोक और पीड़ा के प्रतीक के रूप में भी देखा जाना चाहिए। तो अब समुद्र हट जाएगा। क्यों? क्योंकि समुद्र ने लोगों को उनकी पूरी विरासत उनके पूरे इनाम और मोक्ष का आनंद लेने में बाधा प्रदान की। अब इसे हटा दिया गया है। समुद्र किसी शाब्दिक महासागर या सागर का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह बुराई और अराजकता का प्रतीक है। यह समुद्री राक्षस का घर है और अधिक का स्थान है। यह शोक और रोने पहली रचना के दर्द और पीड़ा का प्रतीक है। वह अब हटा दिया गया है। लेकिन दूसरा, मुझे लगता है कि समुद्र यहां से समुद्र को हटाना निर्गमन मूल भाव पर जारी है। अर्थात हमने एक दुष्ट बुरे साम्राज्य रोमन साम्राज्य पर ईश्वर के फैसले को और साथ ही ईश्वर के उद्धार को एक नए पलायन के रूप में चित्रित होते देखा है। परमेश्वर ने रोम और दुष्ट साम्राज्यों पर जो विपत्तियां बरसाईं उन्हें 8 और 9 और अध्याय 16 में निर्गमन विपत्तियों के संदर्भ में देखा जाता है। लेकिन संतों को कांच के समुद्र के किनारे खड़े होकर अध्याय में मूसा का गीत गाते हुए भी देखा जाता है। 15, मुझे लगता है कि यह निर्गमन रूपांकन के संकेत का एक और संदर्भ है, यानी कि यहाँ का समुद्र लाल सागर है। और यदि आप श्लोक 9 में अध्याय 51 पर वापस जाते हैं, या मुझे खेद है यशाया अध्याय 51 श्लोक 9 में याद रखें कि समुद्र लाल सागर को उस समुद्र के रूप में वर्णित किया गया था जो अराजकता राक्षस का घर था। समुद्री दानव। दिलचस्प बात यह है कि मैंने कहा कि उस पाठ का अरामी अनुवाद वास्तव में यशाया 51:9 में राक्षस की पहचान फिरौन के रूप में करता है। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ समुद्र प्रतीकात्मक रूप से अराजकता और बुराई का लाल सागर है, जैसे यशाया 51:9 में मूल लाल सागर बुराई के समुद्र से जुड़ा है। वास्तव में यशाया में कहीं और यशाया 40:66 में आप पानी के सूखने के इस विषय को निर्गमन मूल भाव के हिस्से के रूप में देखते हैं। वास्तव में यशायाह 40:66 किसी भी अन्य भविष्यवाणी पुस्तक से अधिक परमेश्वर द्वारा अपने लोगों के भविष्य के उद्धार को एक नए निर्गमन के रूप में चित्रित करता है। इसका एक हिस्सा यशायाह 51:9 समुद्र का निष्कासन और लाल सागर जैसे ग्रंथ हैं, जो अराजकता, बुराई और नुकसान के प्रतीक हैं। यह परमेश्वर के लोगों के लिए शत्रुतापूर्ण है। यह प्रदान करता है, जैसा कि निर्गमन के दिनों में हुआ था, कि यह परमेश्वर के लोगों के लिए वादा किए गए देश को पार करने और उसमें प्रवेश करने में एक बाधा थी। अब एक बार फिर यशायाह और मूल निर्गमन घटना की पूर्ति में हम पाते हैं कि ईश्वर ने युगांतकारी लाल सागर को सुखा दिया है, जो कि अराजकता और बुराई, नुकसान और दर्द और पीड़ा का प्रतीक है, अब ईश्वर के लोगों के लिए एक बाधा के रूप में सूख गया है पार करने और अपनी वादा की गई भूमि में प्रवेश करने में सक्षम होना। अब युगांतकारी लाल सागर सूख गया है। जॉन कहते हैं कि समुद्र अब नहीं रहा, तो अब लोग अपनी विरासत में, अपनी वादा की गई भूमि में प्रवेश कर सकते हैं, जो नई सृष्टि, नया स्वर्ग और नई पृथ्वी है। इसलिए मुझे लगता है कि लाल सागर को हटाना निर्गमन के उद्देश्य का एक और हिस्सा है। फिर श्लोक 2 हमें यशायाह की दूसरी विशेषता अध्याय 65 से परिचित कराता है। यशायाह न केवल एक नई रचना की आशा करता है, बल्कि एक नए यरूशलेम की भी आशा करता है। हम एक पल में देखेंगे कि जॉन इसके साथ क्या करता है, लेकिन यरूशलेम की बहाली, यरूशलेम शहर की बहाली दोनों सर्वनाशकारी ग्रंथों में बल्कि पुराने नियम में भी एक प्रमुख विशेषता थी। हम इसे यशायाह अध्याय 65 में पहले ही देख चुके हैं। यशायाह अध्याय 54 भी एक महत्वपूर्ण पाठ है। हम उस पर बाद में गौर करेंगे, लेकिन यशायाह अध्याय 54 और श्लोक 11 और 12 यरूशलेम शहर के पुनर्निर्माण या बहाली की आशा करते हैं। तो अब जॉन भी इसका अनुसरण करता है और वह यरूशलेम को नई रचना के हिस्से के रूप में पुनर्स्थापित देखता है। हम एक क्षण में देखेंगे कि जॉन इसके साथ क्या करता है, लेकिन श्लोक 4 से शुरू करते हुए जॉन उस दृष्टि से हट जाता है जो कि नया यरूशलेम है, और नई सृष्टि पर जॉन दृष्टि से हट जाता है, जिसे वह उसके लिए सजी हुई दुल्हन के रूप में भी वर्णित करता है। पति जो अध्याय 19 और विवाह भोज की कल्पना और दुल्हन के तैयार होने की ओर जाता है और 21:09 की भी आशा करता है, जहां हमें दुल्हन के नए यरूशलेम से परिचित कराया जाएगा और उसका विवरण मिलेगा। लेकिन यहां हम नई यरूशलेम दुल्हन को पाते हैं, जिसका उल्लेख पहले ही श्लोक 2 में किया गया है। नई यरूशलेम अपने पति के लिए खूबसूरती से सजीदजी दुल्हन के रूप में स्वर्ग से बाहर आ रही है। हम देखेंगे कि इसे 21:09 से शुरू करके अधिक विस्तार से विकसित किया गया है। लेकिन कविता 3 में लेखक अब एक ऑडिशन की ओर जाता है, जहां वह एक आवाज सुनता है, और ऑडिशन क्या करेगा, मुझे लगता है, मूल रूप से पहले 2 छंदों की व्याख्या करना है। यह हमें इस बारे में और अधिक बताएगा कि हमें इस नई रचना और इस नई यरूशलेम दुल्हन को कैसे समझना है। और यह पद 3 में पुराने नियम के वाचा सूत्र के संदर्भ से शुरू होता है। पद 3 में वाणी कहती है, अब परमेश्वर का निवास मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ रहेगा, वे उसकी प्रजा होंगे और परमेश्वर आप ही उनके संग रहेगा और उनका परमेश्वर ठहरेगा। तो यह पुराने नियम के अनुबंध सूत्र के जॉन के संस्करण की तरह है, जिसे हम लेविटिकस अध्याय 26 और छंद 11 और 12 में पाते हैं, लेकिन ईजेकील अध्याय 37 में भी। दिलचस्प बात यह है कि एक पाठ में जिसका उन्होंने क्रम से पालन किया है, अब अध्याय 37 जॉन ने संकेत दिया है एक बार फिर ईजेकील को, और 37 और पद 27 मसीह की भविष्य में वापसी और उसके लोगों की बहाली की प्रत्याशा के संदर्भ में। अब अंत में लेखक कहता है, मैं श्लोक 26 से शुरू करूंगा, मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा। यह एक चिरस्थाई वाचा होगी। मैं उन्हें स्थापित करूंगा और उनकी संख्या बढ़ाऊंगा। मैं अपना पवित्र स्थान उनके बीच सदैव बनाए रखूंगा। ध्यान दें कि परमेश्वर का निवास उनके साथ रहेगा। प्रकाशित वाक्य 21:03। और तब मेरा निवास स्थान उनके बीच रहेगा। फिर प्रकाशित वाक्य 21:03, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। तब जाति जाति के लोग जान लेंगे कि मैं यहोवा इसराइल को पवित्र करता हूँ। इसलिए जॉन अब कल्पना करता है कि यहेजकेल ने जिस नई वाचा की आशा की थी, वह अब अंतः प्रकाशित वाक्य 21:3 में नई वाचा के संबंध में पूर्ण और पूर्ण हो गई है। लेविकस 26 और इजेकील 37 दोनों में अंतर है। प्रत्याशा यह है कि भगवान बहाल करेगा और अपने बहाल लोगों इसराइल के साथ एक वाचा बनाएगा। अब यह वाचा केवल इसराइल के साथ नहीं है, परंतु इसमें सभी राष्ट्र सम्मिलित हैं। तो एक बार फिर आपके पास ईश्वर के लोग हैं जो अब न केवल राष्ट्रीय इसराइल हैं, बल्कि इसराइल सहित हर जनजाति और भाषा के लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है। अब परमेश्वर यहेजकेल 37 की पूर्ति में बनाता है। परमेश्वर अपने लोगों के साथ एक नई वाचा बनाता है। यह संभव है कि हमें इसे विवाह संबंध के संदर्भ में भी समझना चाहिए, यह समझते हुए कि विवाह को एक प्रकार की वाचा के रूप में देखा जा सकता है। पद 2 दुल्हन को खूबसूरती से सजी हुई के रूप में प्रस्तुत करता है, और अब हम इसे वाचा या अनुबंध के शब्दों के प्रकार के रूप में देख सकते हैं। विवाह अनुबंध संबंध अब पद 3 में बोला गया है। हालांकि एक और दिलचस्प विशेषता यह है कि यह टैबरनेकल के संबंध में लेविकस 26 के बारे में सच है, लेकिन इजेकील 37, यदि आप याद करते हैं, इजेकील 37 वाचा का संबंध जहां भगवान इजेकील में कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ अपना निवास बनाऊंगा। अध्याय 40 से 48 में उस आवास का वर्णन किया गया है जहां इजेकील को अंतिम समय में बहाल किए गए मंदिर का एक दृश्य दिखाई देता है जिसे मापा जाता है। यही वह पाठ है जो रहस्योद्घाटन में 21:09 से शुरू होने वाली भूमिका निभाएगा। तो फिर जॉन रहस्योद्घाटन के आदेश और वाचा सूत्र का पालन करता है, मेरा निवास उनके साथ होगा, मैं उनका परमेश्वर बनूंगा, वे मेरे लोग होंगे। यह अनुमान है कि तंबू मंदिर में परमेश्वर अपने लोगों के साथ निवास करेगा, जिसका वर्णन 21:09 से 22:05 में अधिक विस्तार से किया जाएगा, जहां जॉन एक दर्शन में नए यरूशलेम मंदिर का वर्णन करता है जिसमें परमेश्वर अब अपने लोगों के साथ निवास करेगा। यहेजकेल 40 से 48 तक की पूर्ति में लो। श्लोक चार को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए फिर श्लोक 1 और 2 के महत्व का वर्णन करते हुए इसे उस भाषा के संदर्भ में वर्णित करें जो पुराने नियम से आती है। फिर वह उनकी आंखों से हर आंसू पोंछ देगा, न मृत्यु होगी न शोक होगा, जो यशायाह की पुस्तक से आता है। इसलिए जॉन अंतिम परिणति को चित्रित करने के लिए पुराने नियम के ग्रंथों, विशेष रूप से इस बिंदु पर यशायाह पर जोर दे रहा है। वास्तव में मैंने जो एक टिप्पणी पढ़ी उसमें कुछ हद तक व्यंग्यपूर्ण बातें कही गई थीं, लेकिन उन्होंने जो कहा उसमें बड़ी मात्रा में सटीकता और गंभीरता थी, और वह यह है कि यदि आपने प्रकाशित वाक्य 21 और 22 में पुराने नियम के हर भ्रम को दूर कर दिया तो आपके पास लगभग कुछ भी नहीं बचेगा, और इसमें काफी सच्चाई है। जॉन अपने अंतस्मय के दृष्टिकोण का निर्माण करने के लिए, जो कुछ उसने देखा उसकी व्याख्या करने के लिए, अपने अंतस्मय के दर्शन को यह दिखाने के लिए कि यह पुराने नियम में अपने लोगों से किए गए परमेश्वर के सभी वादों की पूर्णता और पूर्ति है, पुराने नियम के ग्रंथों का उपयोग कर रहा है। अब वे प्रकाशित वाक्य 21 और 22 में अपनी पूर्णता तक पहुंचते हैं। और अब श्लोक 4 पुराने नियम के ग्रंथों का उपयोग करते हुए नई रचना के महत्व को दर्शाता है। अर्थात पुरानी व्यवस्था की विशेषता वाली हर चीज अब छीन ली गई है। दूसरे शब्दों में, क्या आप एक ऐसी रचना की कल्पना कर सकते हैं जहां आप इस दुनिया और इस रचना की कल्पना कर सकते हैं जिसमें पाप के सभी प्रभाव और बुराई के सभी प्रभाव और वह सब कुछ जो हमें नुकसान पहुंचाता है, वह सब कुछ जो हमें निराश करता है, वह सब कुछ जो हमें पीड़ा और पीड़ा पहुंचाता है, से रहित हो। पीड़ा, वह सब कुछ जो हमें भावनात्मक तनाव का कारण बनता है, पूरी तरह से दूर हो गया। श्लोक 4 की यही परिकल्पना है। जब लेखक कहता है कि उनकी आंखों से हर आंसू निकाल दिया जाएगा और पोंछ दिया जाएगा, तो यह दृष्टि का एक मार्मिक भावनात्मक हिस्सा है। कभी कभी इसकी व्याख्या यह कहकर की जाती है कि यह एक तरह का अंतिम शुद्धिकरण है जब हम अपनी सारी पाप पूर्णता देखते हैं। अब यह एक प्रकार का अंतिम रेचन है। मुझे नहीं लगता कि यह बिल्कुल भी सटीक है, खासकर जब आप इसे इसके पुराने नियम की पृष्ठभूमि के प्रकाश में देखते हैं। लेकिन यहाँ भी आंसू उस पीड़ा और दर्द के आंसू हैं जो पहले क्रम से संबंधित होने के सच थे। उन लोगों की पीड़ा और आंसू जो शैतान और जानवर के शासन के अधीन थे, उन लोगों के आंसू जिन्होंने इस वर्तमान दुनिया के हाथों उत्पीड़न और यहां तक कि मृत्यु का सामना किया, लेकिन अब वे खत्म हो गए हैं और इसलिए उस धरती से जुड़ी चीजें भी खत्म हो गई हैं। अब पीड़ा, रोना और मृत्यु न रहेगी। श्लोक 5 में भगवान अंततः बोलते हैं। श्लोक 5 में भगवान 1-4 का सारांश देते हुए कहते हैं, मैं सब कुछ नया बना रहा हूं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह यशायाह की ओर एक और संकेत है। यशायाह अध्याय 43 श्लोक 19 जो दिलचस्प रूप से एक नए पलायन के संदर्भ में भी है। यदि आप पीछे जाएं और 43:19 पढ़े, तो नया कार्य एक प्रकार से परमेश्वर के लोगों को उनकी विरासत में लाने, परमेश्वर के लोगों को उनके उद्धार की ओर लाने के लिए एक नए पलायन का एक नया कार्य है। इसलिए हम सभी को एक साथ रखते हुए भगवान के लोगों को रहस्योद्घाटन में रोमन साम्राज्य के बंधन और गुलामी में एक और ईश्वर विहीन मूर्ति पूजक दुष्ट साम्राज्य के रूप में देखा जाता है जो उन पर अत्याचार करता है। प्लेग पलायन के कार्य में, जैसे कि प्रकाशित वाक्य के 8 और 9 और अध्याय 16 में प्लेग के फैसले, भगवान ने दमनकारी रोमन साम्राज्य और दमनकारी ईश्वर विहीन दुनिया पर अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया। और फिर एक नए पलायन में भगवान अब उनका उद्धार करते हैं और उन्हें उस दुष्ट राष्ट्र और दुष्ट साम्राज्य से बचाते हैं। वह बुराई, अराजकता, दर्द और पीड़ा के युगांतकारी लाल सागर को भी सुखा देता है जो लोगों के लिए एक बाधा बन गया था। अब लोग अपनी विरासत, अपनी वादा की गई भूमि जो कि नई रचना है, में जा सकते हैं। तो जॉन द्वारा हमारे उद्धार को चित्रित करने का एक प्रमुख तरीका पहले वाले पर आधारित एक नए पलायन के रूपांकन के माध्यम से है। श्लोक 6 से शुरू करते हुए लेखक एक बार फिर कई पुराने नियम के ग्रंथों को एक साथ लाने जा रहा है जो श्लोक 1 और 2 के महत्व, नई रचना और नई यरूशलेम दुल्हन जिसे जॉन देखता है का वर्णन और व्याख्या करता है। इसके अलावा वह इसका वर्णन यह कहकर करते हैं, सबसे पहले श्लोक 6 यह समाप्त हो गया है, मैं अल्फा और ओमेगा, शुरुआत और अंत हूं। अब यह महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ जॉन द्वारा शीर्षक दोहराने के लिए शीर्षकों को दोहराना नहीं है, बल्कि हमने देखा कि अल्फा और ओमेगा, शुरुआत और अंत ने सुझाव दिया कि भगवान इतिहास की शुरुआत और अंत में खड़े थे। वह सृष्टि से पहले और सृष्टि के अंत में अस्तित्व में था। तो अब आप देख सकते हैं कि ये शीर्षक महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जो सृजन के आरंभ और अंत में खड़ा है वह अब सृजन के अपने इरादे को उसके अंतिम लक्ष्य तक एक नए रचनात्मक कार्य में उसकी परिणति तक लाने में सक्षम है। अध्याय एक और अध्याय चार में संपूर्ण सृष्टि पर प्रभुत्वशाली ईश्वर आरंभ और अंत, प्रथम और अंतिम, अल्फा और ओमेगा, सृष्टि के आरंभ और अंत में खड़ा है। अब सृष्टि के अंत में उसे उसके लक्ष्य तक ले आता है, उसकी पूर्णता तक ले आता है। लेकिन बाकी भाषा पर भी ध्यान दें, जो प्यासा है मैं उसे मुफ्त में पानी दूंगा की भाषा यशाया अध्याय 55 और श्लोक 1 से आती है। और वैसे यह अनजाने में हो सकता है कि जॉन ने जोर दिया, या शायद हमें किताब के बाकी हिस्से को ध्यान में रखते हुए मुफ्त में पढ़ना चाहिए। अध्याय 6 में रोमन साम्राज्य के तहत माल की अत्यधिक लागत के विपरीत अध्याय 18 में दिखावती धन और कुलीन अमीरों और कार्गो के विशेषाधिकार के विपरीत उन कार्गो का उल्लेख है जिनसे व्यापारी अमीर थे। अब इसके विपरीत आप पाते हैं रोम की शोषणकारी अर्थव्यवस्था के विपरीत जो अक्सर अमीरों का पक्ष लेती थी। अब आप नई सृष्टि में प्रवेश करने वाले ईश्वर के लोगों के लिए बिना किसी लागत के मोक्ष उपलब्ध पाते हैं। फिर श्लोक 7 में विजय प्राप्त करने का उल्लेख आपको प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में वापस ले जाता है। यहाँ अब दूसरे शब्दों में अध्याय 21 और 22 को अध्याय 2 और 3 में उन लोगों के लिए प्रतिज्ञा और पुरस्कार के रूप में रखा गया है जो सफल हुए हैं। वह है समझौता करने से इनकार करना, अपनी वफादार गवाही बनाए रखना, जानवर का अनुसरण करने और उसकी छवि की पूजा करने से इनकार करना, ईश्वरविहीन मूर्ति पूजक साम्राज्य का हिस्सा बनने से इनकार करना। यदि वे इस तरह से विजय प्राप्त करते हैं तो उन्हें अध्याय 21 और 22 विरासत में मिलेंगे। विरासत की भाषा पर ध्यान दें। यदि वे सफल हो गए तो उन्हें यह सब विरासत में मिलेगा। विरासत शब्द पुराने नियम में एक सामान्य शब्द था, विशेषकर इब्राहिम से किए गए वादे के संबंध में। मेरा मानना है कि अध्याय 21 इब्राहिम से किए गए वादे की अंतिम पूर्ति है कि उसके लोग भूमि के उत्तराधिकारी होंगे। अब उन्हें वह भूमि विरासत में मिली है जो नई सृष्टि है। यह सब यह कहता है उन्हें यह सब विरासत में मिलेगा। सब क्या? इन श्लोकों के माध्यम से 21 में सब कुछ। वह नई सृष्टि है, नई यरूशलेम दुल्हन है। अब उन्हें यह विरासत में मिला है। यह पुराने नियम में इब्राहिम से जुड़े भूमि के उत्तराधिकार के वादों की पूर्ति में है। अब परमेश्वर के लोग यहूदी और अन्य जाति इब्राहिम को भूमि विरासत में देने के वादों में भाग लेते हैं। अब यह एक नई रचना है। दूसरी चीज जो उन्हें 2 शमूएल 7:14 में विरासत में मिली है, श्लोक 7 में एक और विशेषता दिखाने के लिए, वह यह भी है, वह उनका परमेश्वर होगा और वह मेरा पुत्र होगा। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, तुम मेरे पुत्र बनोगे। यह 2 शमूएल 7:14 दाविदिक वाचा सूत्र से निकलता है। यहाँ जो दिलचस्प है वह यह है कि यह डेविड या यीशु पर लागू नहीं होता है, बल्कि हर किसी पर लागू होता है, उन सभी लोगों पर जो नई सृष्टि के उत्तराधिकारी हैं। दूसरे शब्दों में मुझे लगता है कि जिस तरह से हमें इसे समझना चाहिए, यहूदा के गोत्र के शेर के रूप में, मसीहा के रूप में, डेविड के सच्चे पुत्र के रूप में, हम डेविडिक वाचा सूत्र में भी हिस्सा लेते हैं, हम डेविड से किए गए वादे में भी हिस्सा लेते हैं, यीशु मसीह का होने के कारण दाऊद यहूदा के गोत्र का पुत्र, यहूदा के गोत्र का सिंह था। तो अब हमें प्रमुख विषयों से परिचित कराया गया है, विशेष रूप से नई रचना, नई यरूशलेम दुल्हन से। इसके महत्व की व्याख्या पुराने नियम के पाठ के आलोक में की गई है। और अब अंततः 21:09 में हमें नई यरूशलेम दुल्हन से परिचित कराया जाता है जिसे हमने श्लोक 2 में देखा था। और इसलिए अध्याय 21 और श्लोक 9 से शुरू करते हुए हम इसे पढ़ते हैं, 7 स्वर्गदूतों में से एक, और मैंने कहा यही वह जगह है जहां हमें विश्राम लेना चाहिए। यह एक परिचयात्मक सूत्र है जैसा कि हमने अध्याय 17 में देखा था जिसमें वेश्या बेबीलोन का परिचय दिया गया था। अब हम दुल्हन न्यू जेरूसलम को देखते हैं। उन 7 स्वर्गदूतों में से एक जिनके पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे मेरे पास आए और कहा, आओ मैं तुम्हें दुल्हन मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। और वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते हुए दिखाया। वह परमेश्वर की महिमा से चमका और उसकी चमक एक बहुत ही बहुमूल्य रत्न सूर्यकांत मणि के समान, क्रिस्टल के समान स्पष्ट थी। इसकी दीवारें बड़ी और ऊंची थीं, यानी शहर में बड़ी और ऊंची दीवारें और 12 द्वार थे और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे। फाटकों पर इसराइल के 12 गोत्रों के नाम लिखे हुए थे। उत्तर में 3 द्वार थे, दक्षिण में 3 और पश्चिम में 3 द्वार थे। शहर की दीवार की 12 नींव थीं और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम लिखे थे। जो स्वर्गदूत मुझसे बात करता था उसके पास नगर, उसके फाटकों और उसकी दीवारों को मापने के लिए सोने की एक मापने वाली छड़ी थी। जब तक शहर चौड़ा था तब तक उसे एक वर्ग की तरह बसाया गया था। उसने छड़ी से शहर को मापा और पाया कि यह 12,000 स्टेडियम है जो लगभग 1,500 मील लंबा और उतना ही चौड़ा और ऊंचा है। उसने उसकी दीवारों को मापा और वह मनुष्य के नाप के हिसाब से 144 हाथ मोटी थी जो एक स्वर्गदूत के नाप के बराबर है। शहरपनाह यशब की बनी थी और नगर शीशे के समान शुद्ध सोने का था। मैं वहीं रुकूंगा। हम इसे थोड़ी देर बाद पढ़ना जारी रखेंगे। जॉन पत्थर की कल्पना के संदर्भ में शहर की बनावट और शहर की स्थापत्य विशेषताओं का वर्णन करना जारी रखेंगे। लेकिन 21:09 में भी जो दिलचस्प है और मुझे लगता है कि यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि हम न्यू यरूशलम को कैसे पढ़ते हैं, हम न्यू यरूशलम को कैसे समझते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ हमें जॉन के सुनने और देखने के एक और उदाहरण से परिचित कराया गया है। अंतर याद रखें, हमने अध्याय 5 में देखा था कि यूहन्ना ने यहूदा के गोत्र का शेर सुना था जिसने विजय प्राप्त की थी। हालांकि वह जो देखता है वह एक मेमना है, एक ही चीज लेकिन विभिन्न छवियों का उपयोग करना। हमने अध्याय 7 में देखा, मुझे लगता है कि जॉन जो सुनता है वह 144,000 है। वह जो देखता है वह असंख्य भीड़ है। अब पद 9 पर ध्यान दें। यूहन्ना सुनता है, आओ मैं तुम्हें दुल्हन मेमने की पत्नी दिखाने जा रहा हूँ। पद 10 में यूहन्ना जो देखता है वह एक नया यरूशलेम, एक पवित्र शहर है। दूसरे शब्दों में मुझे लगता है कि अगर हम मेमने की दुल्हन को स्वयं लोगों के रूप में समझते हैं जैसा कि हमें करना चाहिए, अध्याय 19 मेमने की शादी का भोज और पेश किए गए लोगों को जोड़कर दुल्हन ने खुद को तैयार कर लिया है। और यहाँ तक कि अन्य नए नियम ग्रंथों के प्रकाश में, जैसे कि इफिसियों अध्याय 5 उदाहरण के लिए, एक पुराने नियम का पाठ जिसमें इसराइल को यहोवा की दुल्हन एक पत्नी के रूप में चित्रित किया गया है। यदि हमें मेमने की दुल्हन को स्वयं लोगों के रूप में समझना है तो यहाँ 9:10 में दुल्हन को नए यरूशलेम के बराबर माना जाता है। जॉन ने सुना कि वह मेमने की दुल्हन को देखने जा रहा है। वह 10 में क्या देखता है और शेष भाग में वह क्या देखेगा, और वह जो मापेगा वह नया यरूशलेम है। इसलिए मैं यह मानता हूं कि नया यरूशलेम स्वयं ईश्वर के परिपूर्ण सिद्ध लोगों के प्रतीक के रूप में है। नया यरूशलेम लोग हैं। अब इसका मतलब यह नहीं है कि नई रचना में कोई शहर ही नहीं होगा या जॉन ने एक शहर का इरादा नहीं किया होगा। यह बहुत अच्छी तरह से मामला हो सकता है और इसकी संभावना भी है, लेकिन मुख्य रूप से जॉन जिस शहर का वर्णन करने जा रहा है वह स्वयं भगवान के लोगों का प्रतीक है। किसी शाब्दिक भौतिक शहर की इमारत का वास्तविक वास्तुशिल्प विवरण नहीं है, हालांकि ऐसा हो सकता है। लेकिन जॉन की बात अधिक प्रकृति का वर्णन करने वाली है, स्वयं लोगों की प्रकृति का वर्णन करने के लिए, स्वयं नई सृष्टि में ईश्वर के पूर्ण सिद्ध लोगों का वर्णन करने के लिए। तो दुल्हन नई यरूशलम, शेष पाठ में मैं इसे दुल्हन नई यरूशलम के रूप में संदर्भित करूंगा। हालांकि मुझे एक क्षण में कुछ और भी जोड़ना होगा, जैसा कि हम देखेंगे, और वह है मंदिर। अत अंतिम समय के प्रतीक के रूप में दुल्हन न्यू जेरूसलम मंदिर अध्याय 21 में जॉन की प्राथमिक चिंता प्रतीत होती है, जिस पर मैं संक्षेप में ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। छंद 11 से 21 में मैं जॉन के न्यू के विवरण पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। जेरूसलम। लेकिन अध्याय 11 से 21 में थोड़ा सा समर्थन करने के लिए अध्याय 21 के छंद 9 और 10 एक तरह से दर्शन का परिचय हैं। फिर शेष अध्याय 21 को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। श्लोक 11 से 21 तक शुरू होने वाला एक भाग नए यरूशलेम की स्थापत्य विशेषताएं, इसके माप, इसके कीमती पत्थरों, इसकी निर्माण सामग्री के संदर्भ में नए यरूशलेम की संरचना है। और फिर 22 से शुरू करके शेष भाग में हम नए यरूशलेम का उसके निवासियों के संदर्भ में वहां कौन होंगे इसका विवरण पाते हैं। इसलिए हम उस अनुभाग को बाद में देखेंगे, लेकिन मैं श्लोक 11 से शुरुआत करना चाहता हूं और आपका ध्यान नए यरूशलेम के वास्तुशिल्प विवरण और श्रृंगार की कई महत्वपूर्ण विशेषताओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले और इस प्रकार में 11 से 21 में से अधिकांश शामिल हैं, लेकिन विशेष रूप से 11 यह है कि नए यरूशलेम को स्पष्ट रूप से दिव्य उपस्थिति के स्थान के रूप में चित्रित किया गया है, स्पष्ट रूप से अपने लोगों के साथ भगवान की उपस्थिति का स्थान। ध्यान दें कि यह श्लोक 11 में कैसे शुरू होता है। इसे भगवान की महिमा के साथ दिखाया गया है। उसकी चमक जैस्पर जैसे बहुत कीमती रत्न की तरह थी, जो क्रिस्टल की तरह साफ थी। जैस्पर और क्रिस्टल जैसे स्पष्ट शब्द के उल्लेख पर ध्यान दें। यह उन पत्थरों में से एक है जिसे हमने अध्याय 4 में देखा था, जो यह दर्शाता है कि स्वर्ग अब पृथ्वी में विलीन हो गया है। यह अपने लोगों के साथ परमेश्वर का निवास है। यह अपने लोगों के साथ भगवान की उपस्थिति का स्थान है, जो जैस्पर द्वारा दर्शाया गया है, जिसका सिंहासन पर बैठे व्यक्ति के वर्णन में प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 से संबंध था। लेकिन विवरण, हालांकि अब हमने कहा कि वास्तव में यहेजकेल की पुस्तक अध्याय 21 से शुरू होता है और अध्याय 40 से 48 तक एक प्रमुख भूमिका निभाने जा रहा है, क्योंकि 40 से 48 में ईजेकील नए मंदिर, एक पुनर्स्थापित मंदिर को देखता है और एक देवदूत इसे मापता है, इसे विस्तार से मापता है और मंदिर का सटीक संख्यात्मक माप देता है। यह प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 और 22 ईजेकील 40 से 48 के लिए एक मॉडल प्रदान करने जा रहा है। हालांकि ईजेकील 40 से 48 में जिस चीज की कमी है वह शहर की संरचना का विस्तृत विवरण है। फिर से कृपया याद रखें कि शहर और इसकी संरचना स्वयं लोगों का प्रतीक है, मुख्य रूप से प्रकाशित वाक्य 21 में। इसके बजाय जॉन बहुमूल्य रत्नों और पत्थरों की इस भाषा का उपयोग करता है और बाद में महायाजक की छाती पर लगे पत्थरों की, जिसका यहेजकेल 40 से 48 में अभाव है। फिर जॉन को वह कहां से मिलता है? खैर, वह अन्य पुराने नियम के ग्रंथों में कीमती पत्थरों के संदर्भ में यरूशलेम की बहाली के स्पष्ट संदर्भ पाता है और शायद सर्वनाशी ग्रंथों में भी। यदि आप एक हनोक और अन्य जैसे सर्वनाशी ग्रंथों के कुछ वृत्तांत पढ़ते हैं तो यरूशलेम की बहाली को कभी कभी पत्थर की तरह चमकने या कीमती पत्थर या पत्थरों के रूप में वर्णित किया जाता है। लेकिन जॉन को पुराने नियम में ही बहुत सारे संदर्भ मिलते हैं। उन ग्रंथों में से एक यशायाह अध्याय 54 है। इससे हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए क्योंकि यशायाह ने इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यशायाह 54:1 है जो परमेश्वर के लोगों की बहाली और यरूशलेम की बहाली की आशा करता है। ध्यान दें कि यशायाह कैसे शुरू होता है। वह कहता है, हे पीड़ित नगर, तू तूफान से पीड़ित हुआ परंतु तुझे शांति न मिली। यह निर्वासन में इज़राइल या यरूशलेम का संदर्भ होगा। वह कहता है, हे दुखित नगर, मैं पत्थरों से निर्माण करूंगा। मैं तुझे फिरोजा के पत्थरों से और तेरी नेव नीलमणि से बनवाऊंगा। मैं तेरे महलों को माणिकों से, तेरे फाटकों को चमचमाते रत्नों से और तेरी सब दीवारों को बहुमूल्य पत्थरों से बनाऊंगा। ध्यान दें कि कैसे शहर का प्रत्येक भाग, किलेबंदी, द्वार और नींद एक निश्चित कीमती पत्थर के बराबर हैं। मेरा उद्देश्य यह वर्णन करना नहीं है कि वे पत्थर वास्तव में क्या थे, बल्कि केवल यह ध्यान देना है कि यरूशलेम की बहाली का वर्णन कीमती पत्थरों के संदर्भ में किया गया था। मुझे लगता है कि यही वह मॉडल है जिसे जॉन यहाँ श्लोक 11 में और श्लोक 21 में नए यरूशलेम को बनाने वाले पत्थरों का वर्णन करते हुए चित्रित कर रहे हैं। और शायद हमें पत्थरों को देखना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि 19 से 21 में नींव पर महायाजक की छाती पर लगे पत्थरों के साथ हमें यही करना चाहिए था। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या कीमती पत्थरों का प्रतिनिधित्व करना नहीं है, शाब्दिक रूप से या विशेष रूप से नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर के लोगों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसा कि आप इफिसियों के अध्याय 2 या 1 पत्रस 2 में पाते हैं, जहां सदस्य स्वयं परमेश्वर के लोग मंदिर या परमेश्वर के निवास स्थान की इमारत के पत्थर या इमारत के ब्लॉक हैं। हालांकि हम देखने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि पत्थरों में शायद, जैसा कि आप अक्सर सर्वनाशी साहित्य में पाते हैं, छवियों में केवल एक सटीक पत्राचार नहीं होता है, वे अनेक विचार उत्पन्न कर सकते हैं। स्पष्ट रूप से पत्थर भगवान की महिमा का संकेत देते हैं और भगवान की महिमा को प्रतिबिंबित करते हैं, लेकिन वे स्वयं उन लोगों का भी प्रतिनिधित्व कर सकते हैं जो अब बिल्डिंग ब्लॉक हैं या न्यू जेरूसलम दुल्हन मंदिर बनाते हैं जो भगवान के लोगों का प्रतीक है। लेकिन जॉन इस यशायाह 54 का सहारा लेते हैं जो यरूशलेम की बहाली के संदर्भ में है। लेकिन यह दिलचस्प है कि वह इसके साथ क्या करता है। ध्यान दें कि जॉन किस प्रकार इज़राइल के लोगों को चर्च के साथ ईश्वर के नए लोगों के रूप में जोड़ता है, जो हर देश जनजाति के लोगों से बना है, जो अब ईश्वर के एक लोग हैं। तो श्लोक 12 और श्लोक 13 में शहर के 12 द्वारों पर 12 जनजातियों के नाम हैं, लेकिन ध्यान दें कि नीम की पहचान 12 प्रेरितों से की जानी है। अब जॉन करता है ऐसी अटकलें हैं, लेकिन जॉन को हमें यह बताने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि कौन सा प्रेरित किस आधार पर है, या वह हमें यह नहीं बताता कि इज़राइल की कौन सी जनजातियां किस द्वार से जाती हैं। उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, वह बस इसके प्रतीकात्मक महत्व में रुचि रखता है। इसमें अब जॉन ईश्वर के पूर्ण लोगों को देखता है जो ईश्वर की मुक्ति ऐतिहासिक योजना का विस्तार करता है, जिसमें इज़राइल राष्ट्र, ईश्वर के लोग इज़राइल, इज़राइल के वफादार और अब उसका चर्च दोनों शामिल हैं। हर जनजाति और भाषा के लोग प्रेरितों पर आधारित थे। प्रेरित चर्च की नींव हैं, जो अब भगवान के अंतिम नए पूर्ण लोगों में मेमने के आसपास केंद्रित है, जो नींव और द्वार वाले शहर का प्रतीक है। तो अब इज़राइल, ओल्ड टेस्टामेंट इज़राइल और न्यू टेस्टामेंट चर्च, अब जॉन भगवान के परिपूर्ण लोगों को एक साथ आने के रूप में देखता है। अब द्वारों की तुलना करके, और हमने इसे पत्थरों के साथ भी देखा है, लेकिन द्वारों की तुलना इसराइल की जनजातियों के साथ करके हम वास्तव में देखते हैं कि यह पहले से ही यहेजकेल 48 में हो रहा है, जिसे जॉन शायद यहां चित्रित कर रहा है। यहेजकेल 48 हमें फाटकों से जुड़ी जनजातियां मिलती हैं। हम नए नियम में यह भी पाते हैं कि हमने पहले ही किसी इमारत या शहर के कुछ हिस्सों से जुड़े लोगों का उल्लेख किया है जो ईश्वर के लोगों का प्रतीक हैं। दिलचस्प बात यह है कि इफिसियों के अध्याय 2 और श्लोक 20 से 22 में यूहन्ना परमेश्वर के मंदिर की नींव को एक समान बताता है जो परमेश्वर के लोगों का प्रतीक है। जॉन ने मंदिर को प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर बनाया गया बताया और फिर यीशु आधारशिला है और बाकी सभी को भगवान के इस निवास स्थान के हिस्से के रूप में बनाया जा रहा है। इसलिए जॉन को एक बार फिर नए नियम के अन्य लेखकों में न केवल लोगों को एक इमारत, एक शहर या मंदिर के रूप में चित्रित करने में प्राथमिकता दी गई है, बल्कि भागों को चित्रित करके प्रतीकात्मक रूप से मंदिर या इमारत के कुछ हिस्सों को भगवान के लोगों के सदस्यों के साथ चित्रित किया गया है। एक और दिलचस्प पाठ मृत सागर स्क्रॉल में है, जो मृत सागर के ऊपर की गुफाओं में पाए गए स्क्रॉल का एक समूह है, जिसके बारे में अधिकांश विद्वान आश्वस्त हैं कि इसे मृत सागर के उस समुदाय द्वारा तैयार किया गया था या कम से कम इसकी सराहना की गई थी या इसे रखा गया था, जिसे हम कुमरान समुदाय कहते हैं या मृत सागर समुदाय, और जिसे हम मृत सागर स्क्रॉल कहते हैं उसके लिए वे जिम्मेदार हैं। ये स्क्रॉल महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पहली शताब्दी में यहूदी धर्म की कम से कम एक शाखा पर प्रकाश डालते हैं। एक दिलचस्प स्क्रॉल यशायाह की पुस्तक पर टिप्पणियों में से एक है, जिसमें यशायाह अध्याय 54 और छंद 11 और 12 शामिल हैं। और जब आप उस पाठ को पढ़ते हैं तो यह दिलचस्प होता है, कुमरान समुदाय ने यशायाह 54, 11 और 12 की व्याख्या की। यशायाह 54, 11 और 12 से द्वारों और नींवों का उल्लेख कीमती पत्थरों और लड़ाइयों और दीवारों आदि से किया गया। कुमरान समुदाय स्पष्ट रूप से प्रतीकात्मक रूप से उन लोगों को अपने समुदाय के संस्थापक सदस्यों के रूप में व्याख्या करता है, जैसे कि समुदाय की परिषद और मुख्य पुजारी आदि। वे यशायाह 54 के प्रत्येक भाग, द्वार, नींव, लड़ाई के मैदान आदि को लेते हैं और वे उन बहुमूल्य पत्थरों की तुलना अपने समुदाय के संस्थापक सदस्यों से करें। तो यह दिलचस्प है कि जॉन, चाहे वह उस पाठ के बारे में जानता हो या नहीं, जॉन अब कुछ ऐसा ही कर रहा है। वह यशायाह अध्याय 54 में यरूशलेम की अंतिम समय की बहाली की प्रत्याशा पाता है, लेकिन जैसा कि कुमरान समुदाय ने इसके साथ किया था, जॉन ने इसकी व्याख्या समुदाय के संस्थापक सदस्यों को संदर्भित करने के लिए की है। अर्थात फाटकों की पहचान इसराइल के राष्ट्रों, इसराइल के गोत्रों से की जाती है। आधारशिलाओं को 12 प्रेरितों के बराबर माना जाता है, जो अब समुदाय की नींव के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए जॉन यशायाह अध्याय 54 के साथ कुछ भी अजीब या अनोखा नहीं कर रहा है, बल्कि कुछ ऐसा कर रहा है जो यशायाह 54 को खोजने में दूसरों ने किया है, जो अब समुदाय की स्थापना में ही पूरा हो गया है और विशेष रूप से संस्थापक सदस्यों और उन लोगों के लिए जो इस तरह के हैं। शहर की नींव ही यहाँ जॉन के संदर्भ के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि वह कहते हैं, हालांकि वह हमें यह नहीं बताते कि कौन सी जनजाति किस गेट से संबंधित है। यह श्लोक 13 में दिलचस्प है, वह कुछ ऐसा कहता है जो शुरू में अत्यधिक आवश्यक नहीं लगता। उनका कहना है कि 3 द्वार पूर्व में, 3 उत्तर में, 3 दक्षिण में और 3 पश्चिम में थे। और मुझे आश्चर्य है कि वह इस हद तक क्यों सुझाव देते हैं कि कौन सा द्वार किस दिशा में जाता है। शायद वह उसे छोड़ सकता था। हालांकि यह दिलचस्प है, जब आप यहेजकेल अध्याय 48 और श्लोक 30 से 35 तक वापस जाते हैं, जब यहेजकेल मंदिर के बाहरी और भीतरी प्रांगण को देखता है और मापता है, तो वह इसी क्रम का पालन करता है। वह शुरू करता है, मुझे क्षमा करें, अध्याय 40। यहेजकेल के अध्याय 40 में जब यहेजकेल मंदिर के बाहरी और भीतरी प्रांगणों को मापता है, तो वह पूर्व में शुरू करता है जैसे जॉन यहाँ करता है, और फिर वह उत्तर में प्रवेश द्वार को मापता है और फिर दक्षिण में। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जॉन यह प्रदर्शित करने के लिए यहेजकेल अध्याय 40 की ओर इशारा कर रहा है कि यह ईश्वर के निवास से कम नहीं है। यह यहेजकेल के अंतिम समय के मंदिर की पूर्ति है। तो यहाँ के द्वारों की दिशा पूर्व, उत्तर और दक्षिण है, जो उस क्रम को दर्शाती है जिसमें यहेजकेल अदालत में प्रवेश द्वार को मापता है। यहेजकेल अध्याय 40 में मंदिर के बाहरी और भीतरी आंगन के किनारे। अध्याय 48 में यहेजकेल वास्तव में शहर का उल्लेख करेगा, लेकिन वह एक अलग क्रम का पालन करता है। इजेकील 48:30-35। यह एक पाठ है जहां इजेकील शहर को मापता है, लेकिन यह एक अलग क्रम का पालन करता है। लेकिन मुझे लगता है कि यहां जॉन का आदेश पूर्व और फिर उत्तर और दक्षिण और अंत में पश्चिम यहेजकेल अध्याय 40 में आंतरिक और बाहरी कोर्ट को मापने के इजेकील के आदेश का पालन करता है, क्योंकि एक बार फिर जॉन इस तथ्य को स्थापित करना चाहता है कि यह इससे कम कुछ नहीं है भगवान का निवास स्थान। यह अंतिम समय का नगर / मंदिर है। तो जॉन सिर्फ नई जेरूसलम दुल्हन को नहीं देख रहा है, न्यू जेरूसलम दुल्हन भी अब एक मंदिर है। यह भगवान का निवास स्थान है। यह यहेजकेल 40-48 में प्रत्याशित अंतिम समय के मंदिर की अंतिम पूर्ति है। दूसरी जगह, हालांकि यशायाह 54 पर वापस आती है, दूसरी जगह जहां यशायाह 54 एक भूमिका निभाता है वह श्लोक 21 में नीचे है, 12 द्वार 12 मोती थे। ऐसा प्रतीत होता है कि यशायाह अध्याय 54 से पता चलता है। और तब नगर का विशाल समुद्र पारदर्शी कांच के समान शुद्ध सोना था। जॉन नए यरूशलेम में बार बार सोने का उल्लेख क्यों करता है? क्योंकि जब आप एक राजा 5-7 जैसे ग्रंथों पर वापस जाते हैं तो मंदिर के निर्माण में सोने ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लगभग हर चीज सोने से बनी थी या सोने से मढ़ी हुई थी, इसलिए सोने की सड़कें बनाकर, शहर को सोने जैसा दिखाकर, यहां तक कि श्लोक 15 में सोने की मापने वाली छड़ी से जॉन एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहता है कि यह भगवान का मंदिर है। यह भगवान का मंदिर निवास स्थान है, अर्थात लोग स्वयं अब मंदिर हैं जहां भगवान अंततः एक नई रचना में निवास करते हैं। श्लोक 15 में मापने का कार्य एक बार फिर यहेजकेल का अनुसरण करता है। इजेकील 40 में वापस शुरू करें और पाठ को पढ़ें और ध्यान दें कि मापने के कार्य का कितनी बार एक देवदूत प्राणी द्वारा उल्लेख किया गया है। लेकिन जबकि यहेजकेल मंदिर को मापता है जिसे जॉन स्पष्ट रूप से चित्रित करता है, दिलचस्प बात यह है कि जॉन के मन में एक और पाठ हो सकता है। जकरयाह 2 हमें मंदिर की नहीं बल्कि यरूशलेम शहर की माप मिलती है, इसलिए जॉन के मन में जकरयाह 2 हो सकता है क्योंकि यह नया यरूशलेम है जिसे अध्याय 21 में मापा गया है। लेकिन जॉन ने यरूशलेम और मंदिर की कल्पना को एक भव्य छवि में मिला दिया है ताकि यह दिखाया जा सके कि नई यरूशलेम दुल्हन लोग भी अब मंदिर हैं जहां भगवान रहते हैं। मैं 2 अन्य विशेषताओं के बारे में एक और बात कहना चाहता हूं। हम माप के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन नए यरूशलेम की संरचना या आकार के विवरण की 2 अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं। सबसे पहले जॉन हमें बताता है कि शहर 4 वर्ग में स्थित है। इसके कुछ और संकेत भी हो सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कुछ शुरुआती इतिहासकारों ने बेबीलोन को 4 वर्ग में फैला हुआ बताया था, तो यह 17 और 18 के बीच विरोधाभास का हिस्सा हो सकता है। वेश्या बेबीलोन, जिसे अब नए यरूशलेम से बदल दिया गया है। लेकिन आप यह भी ध्यान दें कि मंदिर का वर्णन करने के लिए 4 वर्ग या वर्गाकार किसी चीज का विचार यहेजकेल 40-48 में भी उपयोग किया गया है। उदाहरण के लिए अध्याय 42 श्लोक 15 और 20 और अध्याय 45 और श्लोक 2 मंदिर को एक वर्ग के रूप में वर्णित करते हैं। सेप्टुआजेंट में इजेकिए 40 से 48 का ग्रीक अनुवाद मंदिर की अन्य विशेषताओं, वेदी और दया आसन को भी वर्गाकार के रूप में वर्णित किया गया है। तो शहर को वर्गाकार बताकर यह जॉन द्वारा एक ऐसी छवि का उपयोग करने का उदाहरण हो सकता है जो एक से अधिक चीजों का विचारोत्तेजक है। हो सकता है कि वह यरूशलेम को चौकोर के रूप में वर्णित करना चाहता हो क्योंकि यह एक ऐसा तरीका था जिससे बेबीलोन 17 और 18 में रोम और अब न्यू जेरूसलम दुल्हन के बीच अंतर को उजागर करने के लिए बेबीलोन का वर्णन किया जा सकता था। लेकिन साथ ही एक विशेषता वर्गाकार मंदिर और चौकोर शायद यहेजकेल 40 से 48 की वेदी और दया आसन की ओर इशारा करते हुए यह सुझाव देने का एक और तरीका है कि न्यू जेरूसलम दुल्हन भी भगवान का मंदिर है। यह यहेजकेल के अंतिम समय के मंदिर की पूर्ति है जहां भगवान अब अपने लोगों के साथ रहते हैं। वर्णन का ध्यान आकर्षित करने वाला दूसरा पहलू श्लोक 16 में पाया जाता है जहां वह कहता है कि शहर को एक वर की तरह बनाया गया था, हमने उस पर तब तक ध्यान दिया जब तक वह चौड़ा था। उन्होंने शहर को छड़ी से मापा और पाया कि यह 12,000 स्टेडियम था। हम उस माप के बारे में बाद में बात करेंगे, लंबाई में और जितना चौड़ा और ऊंचा था। वह भाषा जितनी लंबी थी उतनी ही व्यापक और ऊंची थी। वह एक किंग्स अध्याय 6 और श्लोक 20 की भाषा को लगभग शब्दशः प्रतिबिंबित करती है। मुझे इसे जल्दी से पढ़ने दीजिए। एक राजा अध्याय 6 और श्लोक 20 जो सुलेमान के मंदिर का वर्णन है। 6:20 में हम पढ़ते हैं, श्लोक 19 से शुरू करते हुए उसने वहां प्रभु की वाचा का संदूक स्थापित करने के लिए मंदिर के भीतर आंतरिक अभयारण्य तैयार किया। भीतरी पवित्र स्थान 20 हाथ लंबा, 20 हाथ चौड़ा, 20 हाथ ऊंचा था। तो चौड़ाई, ऊंचाई और लंबाई में समान होने की वह भाषा जो प्रतिबिंबित करती है, मुझे लगता है एक राजा 6:20 की ओर एक जानबूझकर किया गया संकेत है जो सोलोमन के मंदिर में सबसे पवित्र स्थानों का वर्णन करता है। तो यह बस एक और तरीका है जिससे जॉन यह प्रदर्शित करना चाहता है कि नई यरूशलेम दुल्हन भगवान के मंदिर, भगवान के निवास स्थान से कम नहीं है। यह इजेकील के अंतिम समय के मंदिर की पूर्ति है। यह पूरे इतिहास में एक मंदिर के रूप में अपने लोगों के साथ ईश्वर के निवास की पूर्णता है। अब यह अपने मंदिर के लोगों में, अपने नए यरूशलेम /ब्राइड/मंदिर के लोगों में ईश्वर के निवास में अपने चरम पर पहुंच गया है। अब उन्हें भगवान के निवास स्थान के रूप में चित्रित किया जाता है। अपने अगले खंड में हम कुछ अन्य वास्तुशिल्प विशेषताओं, कुछ अन्य पत्थरों और छंद 19 और 20 में पत्थर की छवियों को देखेंगे और फिर उस विवरण को समाप्त करेंगे जो हमें अध्याय 22 के छंद तक ले जाता है। 5 नए यरूशलेम दुल्हन मंदिर का वर्णन समाप्त करें। यह रहस्योद्घाटन की पुस्तक पर अपने पाठ्यक्रम में डॉक्टर डेव मैथ्यूसन हैं। यह सत्र 28 प्रकाशित वाक्य 21 द न्यू क्रिएशन एंड द ब्राइड न्यू जेरूसलम है।